आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान की दुनिया में झांक रहे हैं और साथ ही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विशाल पृथ्वी पर किसी जगह का सटीक पता कैसे लगाया जाता है।
जी हाँ,
हमारे पास इसके लिए कुछ पाठ्य पुस्तक के अंश हैं जो हमारी इस खोज में मदद करेंगे।
बिल्कुल।
तो आज का हमारा मिशन है सामाजिक विज्ञान की अहमियत को समझना और उन भौगोलिक तरीकों जैसे नक्शे और निर्देशांकों को जानना जिनसे हम अपनी दुनिया को नापते और समझते हैं। शुरू करने से पहले जरा स्रोत में दिए गए एक चित्र की कल्पना करें। एक झील है, कुछ सड़कें हैं, छोटे छोटे घर हैं।
जी हाँ।
कभी सोचा है उस झील में पानी कहाँ से आता होगा? वो सड़कें किसने और क्यों बनाई होंगी?
ये सोचने वाली बातें हैं।
हाँ, और उन घरों में रहने वालों का अतीत कैसा रहा होगा या उनका भविष्य क्या है? ये सवाल सीधे हमें सामाजिक विज्ञान के दिल में ले जाते हैं। तो सामाजिक, समाज और ये भौगोलिक पहेलियां सुलझाने वाले औजारों का मेल दिलचस्प होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं।
जी जरूर।
पहला बड़ा सवाल, आखिर हमें सामाजिक विज्ञान की जरूरत ही क्यों है? आज की दुनिया को देखें तो चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ तकनीक रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है, जिंदगी बदल रही है।
सही बात है।
दूसरी तरफ युद्ध, आपसी तनाव, पर्यावरण पर बढ़ता बोझ, ये सब भी सच है।
हाँ, ये भी है।
ऐसे में शांति कैसे बनाए रखें, सद्भाव कैसे लाएं, अपनी पृथ्वी को कैसे बचाएं, ये सवाल मन में उठते हैं।
बिल्कुल। और सामाजिक विज्ञान इन्हीं उलझे हुए सवालों को समझने और सुलझाने का रास्ता दिखाता है। ये मानव समाज, उसके रिश्तों, संस्थाओं को समझने का एक ढांचा देता है। हाँ, ये भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसा नहीं है जहाँ नियम बिल्कुल तय होते हैं। मानव समाज कहीं ज्यादा विविध और पेचीदा है।
हाँ, ये तो है।
इसलिए सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक तरीकों को अपनाता है। हम आगे कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन ये मानता भी है कि इंसानी व्यवहार हमेशा बंधे बंधाए नियमों में नहीं चलता, उसकी अपनी सीमाएं हैं।
सही कहा। और सामाजिक विज्ञान में कई अलग अलग विषय हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र वगैरह। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, स्रोत बताते हैं कि शुरुआती समझ के लिए इन्हें मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है।
जी बिल्कुल।
इनमें से पहला है भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी। ये हमारे चारों ओर की दुनिया, पृथ्वी की बनावट और नक्शों के बारे में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब आजकल मोबाइल में इतने बढ़िया मैप्स हैं तो फिर ये अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद कहीं भी जाने के लिए फोन मैप पर ही निर्भर रहती हूँ।
हाँ, हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है आजकल, लेकिन ये विषय सिर्फ रास्ता ढूंढने से कहीं ज्यादा गहरा है।
अच्छा
जी, यह हमें दिखाता है कि भूगोल ने, यानी जमीन की बनावट, समुद्र, पहाड़, नदियों ने कैसे हजारों सालों से इंसानी सभ्यताओं को शक्ल दी है। खासकर भारत को देखें तो स्रोत बताते हैं कि कैसे हिमालय की दीवार या लंबी तटरेखा जैसी भौगोलिक विशेषताओं ने यहाँ एक अनोखी और प्राचीन सभ्यता को पनपने में मदद की।
ओहो,
ये सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति की बुनियाद एक तरह से।
अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए अब सीधे नक्शों पर आते हैं। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में हैं और आपको बैंक जाना है।
जी।
आप या तो किसी से पूछेंगे या नक्शा देखेंगे। स्रोत में एक छोटे काल्पनिक शहर का नक्शा भी दिया है, रेलवे स्टेशन से बैंक तक का।
हाँ, चित्र 1.1।
हाँ, तो नक्शे गाइड की तरह हैं। मैंने देखा है उनमें अक्सर कोनों में तीर के निशान होते हैं, वो दिशा के लिए होते हैं, है ना?
बिल्कुल। नक्शा या मानचित्र की परिभाषा ही यही है। किसी भी इलाके का, चाहे छोटा हो या बड़ा, ऊपर से देखने पर उसका एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन। और जब बहुत सारे नक्शे एक किताब में इकट्ठे हों तो उसे एटलस या मानचित्रावली कहते हैं। नक्शे भी कई तरह के होते हैं।
हाँ, जैसे?
जैसे एक होते हैं भौतिक मानचित्र, ये पहाड़, मैदान, नदियां, महासागर जैसी, मतलब प्राकृतिक चीजें दिखाते हैं।
अच्छा।
फिर होते हैं राजनीतिक मानचित्र, ये देशों, राज्यों, शहरों और उनकी सीमाओं को दिखाते हैं, जैसे भारत का राज्यों और राजधानियों वाला नक्शा।
हाँ हाँ, वो तो देखा है।
और तीसरे होते हैं थीमेटिक मानचित्र, ये किसी खास विषय पर जानकारी देते हैं, जैसे कहीं बारिश कितनी होती है या फसलें कहाँ उगती हैं या सड़कों का जाल कैसा है।
अच्छा, थीमेटिक।
जी।
मुझे ये हमेशा हैरान करता है कि कैसे दिल्ली से मुंबई जितनी दूरी नक्शे पर बस कुछ उंगलियों में सिमट जाती है। ये होता कैसे है? क्या ये बस अंदाजा होता है?
नहीं नहीं, ये अंदाजा नहीं बल्कि गणित है। यहीं पर पैमाना या स्केल काम आता है।
स्केल?
हाँ, स्केल, ये नक्शे पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात होता है।
अच्छा,
जैसे श्रोत के छोटे शहर वाले नक्शे में लिखा है 1 सेंटीमीटर = 500 मीटर।
हाँ, देखा था।
इसका मतलब है कि अगर आप नक्शे पर स्केल से 1 सेंटीमीटर नापते हैं तो असल में वो जगह 500 मीटर दूर है।
ओह।
और बड़े नक्शों जैसे भारत के नक्शे में अक्सर नीचे एक रूलर जैसा पैमाना बना होता है जिससे आप नक्शे पर दूरी नापकर असल किलोमीटर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो नक्शा कितना जूम इन या जूम आउट है ये पैमाने पर निर्भर करता है।
अच्छा, पैमाना समझ आया। और दिशाओं की बात करें तो नक्शे पर कैसे पता चलता है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर?
हाँ, तो ज्यादातर नक्शों में ना ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है जिस पर ऊ लिखा होता है, उत्तर के लिए।
हाँ हाँ, देखा है, एन भी लिखा होता है कभी कभी।
जी, एन मतलब नॉर्थ, ये उत्तर दिशा बताता है। एक बार उत्तर पता चल जाए तो बाकी मुख्य दिशाएं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम आसानी से पता लग जाती हैं।
चतुर्दिश।
जी, चतुर्दिश। और इनके बीच की दिशाएं भी होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम।
ठीक है, दिशा मिल गई, पैमाना समझ आ गया। पर नक्शे पे अक्सर ये छोटे छोटे अजीब से निशान क्यों बने होते हैं? रेलवे लाइन के लिए एक तरह की धारी, मंदिर के लिए कुछ और, सब कुछ असल जैसा क्यों नहीं बना देते?
हाँ, वो है प्रतीक चिन्ह या सिंबल्स। जरा सोचिए, अगर नक्शे पर हर घर, हर पेड़, हर सड़क को असल जैसा बनाने लगे तो नक्शा कितना भर जाएगा।
हाँ, ये तो है, कुछ समझ ही नहीं आएगा।
बिल्कुल, और उसे समझना कितना मुश्किल होगा। प्रतीक चिन्ह कम जगह में ज्यादा जानकारी दिखाने का तरीका है। ये एक तरह की सांकेतिक भाषा है, कह सकते हैं।
कोड लैंग्वेज जैसी।
हाँ, एक तरह से। और अच्छी बात यह है कि नक्शे बनाने वाले अक्सर मानक या रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेलवे लाइनों, सड़कों, पक्की कच्ची, पुल, नदी, कुआं, मंदिर, पोस्ट ऑफिस वगैरह के लिए तय निशान होते हैं।
अच्छा,
इससे कोई भी आसानी से नक्शा पढ़ो और समझ सकता है। भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संगठन इन प्रतीकों को मानकीकृत करते हैं।
ये तो हुई समतल कागज पर नक्शे बनाने की बात, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी तो गोल है।
जी हाँ,
स्रोत में महान भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट का जिक्र है जिन्होंने सदियों पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, हालांकि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है।
बिल्कुल, अद्भुत ज्ञान था वो।
तो एक गोल चीज को सपाट कागज पर सही सही कैसे दिखाएं, ये तो मुश्किल लगता है।
बिल्कुल मुश्किल है। स्रोत में संतरे के छिलके का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
हाँ, मैंने पढ़ा।
एक संतरे को छीलकर उसके छिलकों को बिना तोड़े मरोड़े या सिकोड़े एकदम सपाट फैलाने की कोशिश कीजिए, ये मुमकिन नहीं है।
नहीं हो सकता,
कुछ न कुछ विकृति मतलब डिस्टॉर्शन आ ही जाएगी। यही चुनौती ग्लोब जैसी गोल सतह को कागज जैसे समतल माध्यम पर उतारने में आती है।
तो फिर?
इसीलिए पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल ग्लोब ही होता है, क्योंकि वो पृथ्वी की तरह ही गोल है।
हाँ, ग्लोब तो देखा है।
ग्लोब पर महाद्वीपों और महासागरों का आकार और दूरी ज्यादा सही दिखती है कागज के नक्शे के मुकाबले।
ठीक है, तो ग्लोब बेहतर है। पर ग्लोब या नक्शे पर किसी एक खास बिंदु, मान लीजिए दिल्ली शहर की, एकदम सटीक लोकेशन कैसे बताएं, मतलब पिन पॉइंट कैसे करें?
बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स काम आते हैं।
कोऑर्डिनेट्स?
जी। इसे समझने के लिए स्रोत में दो अच्छे उदाहरण हैं। पहला, बाजार का। आप दोस्त को कहते हैं, बाजार के गेट से अंदर आकर 5वीं गली में दाहिने हाथ की 7वीं दुकान पर मिलो।
हाँ, ऐसा तो बोलते हैं।
यहाँ दो जानकारी, गली नंबर और दुकान नंबर, मिलकर सटीक जगह बता रही है ना। दूसरा, शतरंज का। खिलाड़ी नोट करते हैं कि प्यादा घा खाने के नंबर 2 से नंबर 4 पर चला। यहाँ भी अक्षर, घा और अंक 2 और 4 मिलकर सही चाल बता रहे हैं। इसी तरह ग्लोब या नक्शे पर किसी भी जगह की सटीक स्थिति बताने के लिए हमें दो तरह की काल्पनिक रेखाओं के जाल की जरूरत होती है।
काल्पनिक रेखाओं का जाल, ये क्या है?
चलिए ग्लोब पर देखते हैं। दो बिंदु सबसे खास हैं, सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव।
हाँ।
इन दोनों के ठीक बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक घेरा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, इक्वेटर।
इक्वेटर, हाँ।
ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब किसी भी जगह का अक्षांश, लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर उसकी कोणीय दूरी है।
कोणीय दूरी मतलब
एंगल में दूरी। इसे डिग्री में नापते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है।
अच्छा, 0 डिग्री।
जी, जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांश बढ़ता है और ध्रुवों पर ये 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण हो जाता है।
ओके।
भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं या समानांतर पैरेलल्स कहलाती हैं, और ये ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती हैं।
पैरेलल्स।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अक्षांश का सीधा संबंध जलवायु से भी है। 0 डिग्री के पास गर्मी उष्णकटिबंध, बीच के अक्षांशों में मिला जुला मौसम शीतोष्ण कटिबंध, और 90 डिग्री के पास ठंड शीत कटिबंध।
ठीक है, तो अक्षांश लैटिट्यूड हमें बताता है कि भूमध्य रेखा से कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में और कितनी दूर।
बिल्कुल।
लेकिन पूरा पश्चिम का कैसे पता चलेगा? जैसे दिल्ली और टोक्यो दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, पर एक दूसरे से बहुत दूर है पूरा पश्चिम दिशा में।
बिल्कुल सही सवाल। इसके लिए हमें देशांतर लॉन्गिट्यूड की जरूरत होती है।
लॉन्गिट्यूड?
जी, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिन्हें यम्युत्तर कहते हैं।
मेरिडियंस?
हाँ, जैसे अक्षांश के लिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, वैसे ही देशांतर के लिए भी एक 0 डिग्री रेखा चाहिए थी। तो 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरने वाली याम्युत्तर को प्रमुख याम्युत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर माना गया।
अच्छा, ग्रीनविच सुना है।
जी, अब किसी भी स्थान का देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर उसकी कोणीय दूरी है, इसे भी डिग्री में नापते हैं। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व ई या 180 डिग्री पश्चिम डब्ल्यू तक।
ओके।
जैसे स्रोत बताता है कि दिल्ली लगभग 77 डिग्री पूर्व पर है, टोक्यो 140 डिग्री पूर्व पर, जबकि न्यूयॉर्क 74 डिग्री पश्चिम पर है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की रेखाएं असल में एक ही हैं, जो ग्लोब पर ग्रीनविच के ठीक पीछे पड़ती हैं।
अच्छा।
तो अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्लोब पर एक जाल यानी ग्रिड बनाते हैं, जिससे किसी भी जड़ा की सटीक लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट्स पता चल जाती है।
वाह, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
जी, और यहाँ एक बेहद रोचक बात है जिसका जिक्र स्रोत में है।
क्या?
ग्रीनविच को 0 डिग्री मानने का फैसला तो 1884 में हुआ, लेकिन उससे सदियों पहले प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान बहुत उन्नत था।
हाँ?
भारतीय खगोलविद उज्जैन तब उज्जैनी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को प्रमुख याम्युत्तर मानते थे। वो उसे मध्य रेखा कहते थे और उसी के आधार पर समय और ग्रहों की गणनाएं करते थे।
सच में उज्जैन?
जी हाँ, स्रोत के चित्र 1.5 में इसका जिक्र है। आर्यभट्ट, वराहमीर जैसे नाम इसी परंपरा से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान विज्ञान का विकास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से भी हो रहा था।
वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। उज्जैन का अपना प्राइम मेरिडियन।
अच्छा, आपने समय की बात की, देशांतर का समय से भी कुछ लेना देना है क्या?
हाँ हाँ, बिल्कुल है। स्रोत ले वो ग्रोब और केबल लैम्प का उदाहरण था कुछ।
जी, देशांतर और समय का गहरा रिश्ता है। सोचिए, टेबल लैम्प सूरज है और ग्लोब हमारी पृथ्वी। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 24 घंटे।
जी।
और एक चक्कर मतलब 360 डिग्री देशांतर घूमना। तो हिसाब लगाइए, पृथ्वी एक घंटे में कितनी घूमती है?
360 को 24 से भाग दें।
15 डिग्री।
बिल्कुल, 15 डिग्री, यानी हर घंटे पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है।
अच्छा, तो इसका मतलब अलग अलग देशांतर पर सूरज अलग अलग समय पर सिर पर होता होगा।
एकदम सही। इसी वजह से हर देशांतर का अपना स्थानीय समय लोकल टाइम होता है।
लोकल टाइम?
जी। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर को आधार मानकर चलें, जब हम पूर्व की ओर जाते हैं जैसे भारत की तरफ, तो सूरज पहले उगता है, इसलिए वहां का समय ग्रीनविच से आगे होता है। हर 15 डिग्री पूर्व जाने पर समय 1 घंटा आगे हो जाता है। तो 15 डिग्री पूर्व पर ग्रीनविच से 1 घंटा आगे, 30 डिग्री पूर्व पर 2 घंटे आगे।
और पश्चिम जाने पर? और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं जैसे अमेरिका की तरफ, तो सूरज बाद में उगता है, इसलिए वहां का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। हर 15 डिग्री पश्चिम जाने पर समय 1 घंटा पीछे हो जाता है। स्रोत का चित्र 1.7 इसी को दिखाता है।
तो इसीलिए स्रोत में वो पहेली थी, एक दोस्त गुजरात के पोरबंदर में, दूसरा असम के तिनसुकिया में।
हाँ हाँ।
तिनसुकिया वाले के यहाँ सूरज डूब गया, पर पोरबंदर वाले के यहाँ अभी उजाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जगहों के देशांतर में काफी फर्क है।
एकदम सही पकड़ा। भारत का पूर्व पश्चिम फैलाव काफी ज्यादा है। पोरबंदर लगभग 69 डिग्री पूर्व पर है और तिनसुकिया लगभग 95 डिग्री पूर्व पर।
बापरे, कितना फर्क हुआ?
इनके बीच करीब 26 डिग्री देशांतर का फर्क है।
26 डिग्री?
हाँ, और हमने देखा कि 15 डिग्री पर एक घंटे का फर्क पड़ता है, तो 26 डिग्री पर लगभग पौने दो घंटे, मतलब एक घंटा 45 मिनट के करीब का फर्क पड़ेगा।
पौने दो घंटे?
जी हाँ, यानी तिनसुखिया में सूरज पोरबंदर के मुकाबले पौने दो घंटे पहले उगता और डूबता है।
पौने दो घंटे का फर्क? तो क्या पूरे देश में लोग अपनी घड़ियां अलग अलग समय पर रखते हैं? ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा, ऑफिस का टाइम?
हाँ, ये वाकई बड़ी समस्या होती। इसी से बचने के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम और समय क्षेत्र या टाइम जोन्स का विचार आया।
स्टैंडर्ड टाइम?
जी, ज्यादातर देश क्या करते हैं कि अपने देश के बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही पूरे देश के लिए आधिकारिक समय मान लेते हैं।
अच्छा।
भारत ने 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो लगभग देश के बीच से प्रयागराज के पास से गुजरती है, के स्थानीय समय को अपना मानक समय चुना है, जिसे हम भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं।
IST? हाँ, ये तो सुना है।
ये ग्रीनविच मीन टाइम, या जिसे अब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या UTC कहते हैं, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब IST = GMT + 5.30।
5.5 घंटे आगे।
जी, और पूरी दुनिया को भी इसी तरह लगभग 15-15 डिग्री देशांतर के हिसाब से 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
24 टाइम जोन।
हाँ, हालांकि ये सीमाएं हमेशा सीधी देशांतर रेखाएं नहीं होती, वे अक्सर देशों या राज्यों की सीमाओं के हिसाब से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ताकि एक ही इलाके में दो समय ना चलें।
मतलब प्रैक्टिकल कारणों से।
बिल्कुल। कुछ बहुत बड़े देश जैसे अमेरिका या रूस इतने फैले हुए हैं कि उन्हें एक से ज्यादा समय क्षेत्र अपनाने पड़ते हैं। अमेरिका में 6, रूस में तो 11।
11 टाइम जोन।
जी,
दुनिया सच में गोल है और समय का चक्कर भी गजब है। अच्छा, जब हम ग्रीनविच 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम पहुंचते हैं तो क्या होता है? वो तो एक ही रेखा है, आपने बताया था।
हाँ, वो ग्लोब पर ग्रीनविच के ठीक विपरीत वाली रेखा है, और वहीं से जुड़ी है एक और दिलचस्प चीज, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL।
इंटरनेशनल डेट लाइन, तिथि रेखा, मतलब तारीख बदलने वाली रेखा।
बिल्कुल। ये मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर के पास से गुजरती है। जब आप इस रेखा को पार करते हैं तो तारीख बदल जाती है।
कैसे?
नियम ये है, अगर आप पूर्व की ओर यात्रा करते हुए, जैसे अमेरिका से एशिया आते हुए, इसे पार करते हैं तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं। मतलब अगर सोमवार था तो रविवार हो जाता है,
एक दिन कम।
हाँ, और अगर आप पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए, जैसे एशिया से अमेरिका जाते हुए, इसे पार करते हैं तो आप एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, रविवार से सोमवार हो जाता है।
अच्छा, एक दिन ज्यादा।
जी, और ये रेखा भी एकदम सीधी नहीं है 180 डिग्री पर, इसे जानबूझकर कुछ जगहों पर मोड़ा गया है, ताकि ये किसी एक देश या द्वीप समूह को दो अलग अलग तारीखों में न बांट दे।
कमाल है। तो चलिए आज की इस यात्रा को समेटते हैं। हमने समझा कि सामाजिक विज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि हमारी जटिल दुनिया और समाज को समझने का एक जरूरी नजरिया है।
बिल्कुल।
नक्शे सिर्फ रास्ते नहीं बताते, बल्कि पैमाने, दिशा और प्रतीकों की मदद से दुनिया को कागज पर उतारने के शक्तिशाली औजार हैं।
जी हाँ,
ध्रुव हमारी गोल पृथ्वी का बेहतर मॉडल है, और अक्षांश देशांतर वो जादुई ग्रिड है जिससे हम कहीं भी किसी भी जगह की सटीक लोकेशन जान सकते हैं। फिर हमने देखा कि देशांतर का सीधा रिश्ता समय से है, जिससे स्थानीय समय, मानक समय, टाइम जोन और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी तय होती है।
सही कहा।
तो सार ये है कि हमारे पास अपनी दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह जानने के लिए कितने अद्भुत तरीके मौजूद हैं।
बिल्कुल। और एक बात जो श्रोत ने शुरू में सामाजिक विज्ञान के बारे में कही थी, उसे दोहराना चाहूंगा, सही सवाल पूछना।
हाँ, वो जरूरी है।
जिज्ञासा और सही सवाल ही हमें गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। साथ ही हमने देखा कि कैसे भूगोल, इतिहास, खगोल विज्ञान, ये सब आपस में जुड़े हैं। ज्ञान के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखने से, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से, तस्वीर ज्यादा साफ और मुकम्मल होती है।
बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि हम भौतिक दुनिया, जमीन, पहाड़, शहर का नक्शा कितनी सटीकता से बना सकते हैं।
जी,
पर क्या हम उन चीजों का भी नक्शा बना सकते हैं जिनकी चर्चा सामाजिक विज्ञान करता है, जैसे गरीबी का फैलाव, खुशी का स्तर या सांस्कृतिक मूल्यों का टकराव?
अच्छा सवाल है।
इन अमूर्त इंसानी चीजों का मानचित्रण करने में क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।